सुबह सुबह निक और प्रियल घर पर अपने अपने कामों में लगे थे। घर की डोरबेल बजने पर निक ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिमी खड़ी थी। मिमी ने अंदर आते हुए पूछा, किमोन आछे? निक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाज़ा बंद कर उसके पीछे आया। कुछ काम था? निक ने पूछा। उसने नानुकुर हिलाया, तभी उसकी नज़र निक की अंगुली पर गई जिसमें उसने वेडिंग रिंग पहन रखा था। उस रिंग को देखकर मिमी को बहुत बुरा लगा और उसका चेहरा उतर गया। उसी समय प्रियल भी ये देखने के लिए बाहर आई कि कौन आया है। मिमी ने मन में कहा, ये तो क्रिश्चियन है और इनके हाथ में रिंग भी है, तो क्या ये शादीशुदा है? इनको पूछूंगी तो अजीब नहीं लगेगा क्या? क्या हुआ मिमी, कुछ बोलोगी तुम? घर पर और कोई नहीं है? निक ने पूछा। ये कौन है? प्रियल ने मिमी की तरफ देखकर पूछा। मिमी ने जैसे तैसे हिम्मत की और कहा, क्या आप शादीशुदा हो? निक ने प्रियल को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। उसके इस तरह प्रियल को देखने से मिमी को लगा कि वो निक की वाइफ है, फिर भी उसने खुद की तसल्ली के लिए पूछ ही लिया। तो क्या ये आपकी वाइफ है? ये बोलते हुए निक ने गंदा सा मुंह बनाया और कहा, ये और मेरी वाइफ नहीं, ये तो इस घर की नौकरानी है। मिमी ने फिर प्रियल की तरफ देखा और कहा, लेकिन लग तो नहीं रही। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा करो, इसी से पूछ लो, निक ने प्रियल से कहा। क्या तुम मेरी वाइफ हो? प्रियल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुस्से से निक और मिमी को देख रही थी। देखो ना कितनी अजीब सी है ये लड़की, सफाई खत्म कर दी तुमने? निक ने कहा। मिमी के चेहरे पर खुशी के भाव थे, उसने उसी अंदाज में कहा, ओ तो ये सफाई करने वाली है। प्रियल ने गुस्से में जवाब दिया, देखो तुम जो भी हो निकलो यहाँ से। लगता है मिमी तुमने इसकी की हुई क्लीनिंग खराब कर दी, तभी शायद इतना गुस्सा कर रही है। अरे ऐसे घर आए मेहमान पर गुस्सा नहीं करते, क्या हो गया जो मिमी ने थोड़ा खराब कर दिया? तुम फिर से कर लेना, निक ने प्रियल को परेशान करने के लिए कहा। इसे छोड़िए, हाँ तो मैं यहाँ इसीलिए आई थी कि आपसे कुछ पूछने आई थी। मैं खाना बनाने जा रही थी, आपको कुछ स्पेशल खाना है? मैं बना दूंगी, मिमी ने कहा। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? निक ने पूछा। हाँ, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। कुकिंग करने का शौक होने की वजह से मैंने काफ़ी सारी डिशेस बनाना सीखी हैं। और तुम बात करना पसंद करती हो? निक ने मिमी से पूछा। बात भले ही वो मिमी से कर रहा हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान प्रियल में ही लगा था। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ अपनी बात बोलने के अलावा सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अच्छे लिसनर्स नहीं होते, मिमी ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताओ फिर कि तुमने कभी खाने में नमक के बजाय चीनी डाली है? मिमी उसकी बात सुनकर थोड़ा हंसी और फिर कहा, ऐसा थोड़ी होता है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो खाने में नमक की जगह चीनी डालता होगा। वैसे भी जार के ऊपर लिखा तो होता है कि नमक है या चीनी। हाँ, ऐसी गलती अक्सर वही करते हैं जिसे खाना बनाना नहीं आता हो। ओके, लास्ट सवाल, क्या तुमने कभी किसी को डंडे या झाड़ू से मारा है? ये आज आप कैसी बात कर रहे हो? कभी तो इतने गुस्से में रहते हो कि बोलते भी नहीं, और आज इतने सारे सवाल। मैं क्यों मारूंगी किसी को? आप अपार्टमेंट में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने तो किसी से गुस्से में चिल्लाकर बात तक नहीं की है। निक के इतने सारे सवाल पूछने की वजह से मिमी थोड़ा हैरान हो गई। मिमी अब से पहले जब भी उससे मिली थी, निक ने उससे ठीक से बात करना तो दूर, उसे अपने घर पर भी नहीं आने दिया था। फिर तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, निक ने मुस्कुराते हुए बोला। किस चीज़ के लिए परफेक्ट? मिमी ने हैरानी से पूछा। प्रियर काफ़ी देर से उन दोनों को बात करते हुए सुन रही थी, उसे निक पर गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर तो वो खुद पर कंट्रोल करती रही, लेकिन जब निक ने मिमी को परफेक्ट बोला तो उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया। प्रियल चिल्लाते हुए उसके पास गई और बोली, तुम परफेक्ट हो या नहीं ये अपने घर जाकर डिसाइड करो। अगली बार यहाँ पर आई हो ना तो तुमने तो किसी की झाड़ू या डंडे से पिटाई नहीं की होगी, लेकिन मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। अब लिख लो यहाँ से। इनका क्या हुआ? मिमी ने हैरानी से कहा, और प्रियल को उंगली दिखाते हुए आगे बोली, देखिए आप अपनी हद में रहिए। अच्छा, अब तुम सिखाओगी मुझे हद में रहना? प्रियल ने गुस्से में जवाब दिया। उन दोनों के बीच बहस को बढ़ता देखकर निक मिमी के पास आया और बोला, मिमी तुम एक बार जाओ यहाँ से, बाद में आ जाना। ये नौकरानी थोड़ी पागल है, पता नहीं कब गुस्से में झाड़ू या डंडा लेकर पीछे दौड़ने लगेगी, और पता भी नहीं चलेगा। हम कराते हैं इसका इलाज, भेजते हैं इसे किसी मेंटल असाइलम में, तुम अभी जाओ। उसकी बात मानकर मिमी वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रियल ने दौड़कर दरवाज़ा बंद किया और निक के पास आई। अच्छा, तो मैं नौकरानी हूँ? मैंने तो कहा नहीं, तुम ही कहती रहती हो हमेशा, तो मैंने बता दिया। देखो, अगर मैं ये कहता कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम और ज़्यादा गुस्सा होती, निक ने हल्के तरीके से जवाब दिया, मानो वहाँ कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। और वो किस चीज़ के लिए परफेक्ट है, क्लियरली बताएंगे आप मुझे? प्रियल ने पूछा। तुमने ही कहा था कि दूसरी ढूंढ लो, मैंने तो कल अपने रिक्वायरमेंट्स भी बताए थे, एंड शी इज़ परफेक्ट। अगर मैंने तुम दोनों की शादी नहीं करवा दी तो मेरा नाम भी प्रियल शर्मा नहीं है, प्रियल ने गुस्से से कहा। हाँ, तुम तो अपने नाम बदलती रहती हो, कभी प्रियल तो कभी जन्नत, मैंने भी तो तुम्हें कितने सारे नाम दिए हैं,
उनमें से कोई एक अच्छा सा देखकर रख लेना। वैसे मुझे तुम्हें गुड़िया कहना बहुत अच्छा लगता है, तो गुड़िया कैसा रहेगा? प्रियल बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चली गई, जबकि निक प्रियल को परेशान करके जोर जोर से हंस रहा था। प्रियल नहाने के लिए बाथरूम के अंदर आई, तभी उसकी नजर शीशे में गई और उसने खुद को देखा। उसने आलिया के कपड़े पहने हुए थे जो कि उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे थे, और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। गुस्से की वजह से चेहरा भी उतरा हुआ था। क्या मैं सच में नौकरानी जैसी लग रही हूँ? मेरे पास तो पहनने के लिए यहाँ पर कपड़े भी नहीं है, और आलिया की ड्रेस तो मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही। फिट तो छोड़ो, मेरे पास आज पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं है। जिनी, परी और आलिया भी यहाँ पर नहीं है, अगर उनसे मांगू तो? खुद से बातें करते हुए प्रियल ने बाहर आकर रूम में इधर उधर देखा तो उसे सामने वो ड्रेस दिखाई दी जो उसने उस दिन पहना था जिस दिन निक ने उसे जन्नत बाजार से बाहर निकाला था। अब तो बस यही बचा है, लेकिन ये इतना हैवी और ब्राइट है ना। बाकी सब छोड़ो, ये मुझे कहीं ना कहीं जन्नत बाजार की याद भी दिलाता है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सोचते हुए प्रियल ने वो ड्रेस की और बाथरूम की तरफ बढ़ी। जल्दी से रेडी होकर आओ, मुझे कुछ काम है, निक बाहर से चिल्लाया। मैं नहा रही हूँ और आपको जो काम है वो अपने आप करिए, प्रियल ने अंदर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर निक सोचने लगा, और नहाकर पहनोगी क्या? एक बार तुम बाहर तो आओ, फिर पता चलेगा तुम्हें क्या करने वाला हूँ। दो दिन से प्रियंका जी की मौत का जो ड्रामा लगा रखा है ना तुमने, बस बहुत हो गया। अभी कुछ देर में सब आते ही होंगे, मैं भी देखता हूँ सबके सामने कैसे चुप रहती हो तुम। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए और वो तो मैं लेकर ही रहूंगा मिसेस शर्मा। निक काफी देर से कुछ नहीं बोला तो प्रियल परेशान हो गई। ये इतनी देर से शांत कैसे है? संभल जा प्रियल, ये जरूर तूफान के आने से पहले की शांति है। ये इंसान चुपचाप रह ही नहीं सकता, अगर सामने वाला इसे परेशान करे तब तो बिल्कुल नहीं। अभी मैंने चिल्लाकर बोला और इसने
कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर ये कुछ प्लान कर रहा है। इससे पहले कि सब आए मुझे पता लगाना होगा कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, प्रियल ने सोचा। प्रियल जल्दी से नहाकर वही ड्रेस पहनकर निक के सामने आई। निक उसे उस ड्रेस में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। निक ने प्रियल से कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में उसे घूरकर देख रहा था। ऐसे तो मत देखो मुझे, कपड़े नहीं थे मेरे पास। और तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं? निक ने गुस्से में जवाब दिया। मैं क्यों बताऊं, और वैसे भी ये ड्रेस मेरी थी तो मैंने पहन ली, और मुझे अच्छी लगती है इस टाइप की ड्रेसेस, बोलते हुए प्रियल उसके पास आकर बैठ गई। देखो गुड़िया, मेरा दिमाग खराब मत करो और जाकर ये ड्रेस चेंज करके आओ। कपड़े नहीं है ना, जाओ मेरे पहन लो। याद है एक बार मैं आपके घर पर आई थी और हम दोनों बाथरूम में गलती से भीग गए थे? हाँ मुझे सब याद है, और बाथरूम में हम गलती से नहीं भीगे थे, तुमने जानबूझकर शावर खोल दिया था मुझे भगाने के लिए। अचानक से इसे याद करने का मतलब? मतलब ये कि मैंने उस दिन आपसे आपके कपड़े मांगे थे तो आपने मना कर दिया था कि ना तो मैं अपना रूम देने वाला हूँ और ना ही अपने कपड़े। प्रियल कपड़े बदलने के बजाय पुरानी बात कर रही थी। अब क्या तुम उन बातों को लेकर भी मुझसे झगड़ा करोगी? शायद तुम भूल रही हो, मेरा रूम और कपड़े तो बाद में आते हैं, उससे पहले मैं खुद तुम्हारा हूँ। अब जाओ, जाकर चेंज कर लो। मुझे नहीं अच्छा लगता था जब तुम जन्नत बाजार में जन्नत बनकर रह रही थी, और ये सब कहीं ना कहीं उसकी याद दिला रहा था। एक बार एडजस्ट कर लो, शाम तक मैं नई ड्रेसेस ला दूंगा। मैं नहीं बदलूंगी, अजीब जबरदस्ती है, और मुझे इस ड्रेस में रॉयल फील हो रहा है, वरना आपका बस चले तो मुझे एज अ नौकरानी इंट्रोड्यूस करवाओ सबसे। प्रियल अभी भी जिद करके वहीं बैठी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे मजबूर करो, अब यहीं सही, बोलते हुए निक ने प्रियल को कंधे पर उठाया और जबरदस्ती कमरे के अंदर ले गया। छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे, प्रियल ने घबराते हुए कहा। डरो मत, तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कपड़े तो तुम्हें बदलने पड़ेंगे। निक प्रियल को ड्रेस चेंज करवाने के लिए जबरदस्ती रूम में लेकर आया। प्रियल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और इसी झड़प में गलती से निक के हाथ से प्रियल के ब्लाउज के पीछे लगा नॉट खुल गया। इसी के साथ प्रियल जल्दी से पीछे मुड़ गई। ये क्या किया आपने? कभी तो बोलते हो जबरदस्ती नहीं करोगे, और कभी ये सब, आपकी आदत हो गई है ना दूसरों को हर्ट करने की, प्रियल गुस्से में चिल्लाई। सॉरी, बोलते हुए निक की नज़र प्रियल की पड़ी तो उसे सामने अपने नाम वाला टैटू दिखाई दिया जो प्रियल ने उसके लिए बनवाया था।